श्रीमद्भागवतम भागवत सार की श्रृंखला में आज 18वें अध्याय पर चर्चा है और इसका बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक 13वां श्लोक इसको पहले पढ़ेंगे और फिर इस अध्याय पर चर्चा करेंगे। कृपया दोहराइए। तुलया मलवे नापि न सर्गम न पुनर्भवम् भगवत्संगि संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तुल्यामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगि संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगि संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। न स्वर्गं न पुनर्भवम् तुलयां तुलना करना लवे क्षण मात्र से अपि भी न कभी नहीं स्वर्गम स्वर्गलोक न नतो अपुनः भवम् पदार्थ से मोक्ष भगवत संगी भगवत भक्त संगस्य संगति का मर्त्यानाम मरने वालों का किम क्या रखा है उत कहने में आशिषः सांसारिक आशीर्वाद। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न पदार्थ से मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपत्ति के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए हैं। तात्पर्य, एक वस्तु की तुलना दूसरे से तभी की जा सकती है जब कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख के प्रति आसक्त होते हैं वे चंद्र शुक्र तथा इंद्र लोक जैसे स्वर्गों की कामना करते हैं, किंतु जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से उद्विग्न हो उठता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म ना होना कहलाता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्ग लोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, ना ही वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्ग लोक में प्राप्य भौतिक सुख माया जाल के समान होता है और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से मुक्त रहते हैं अतएव वे भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को इस संसार से भी कुछ लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वह एकांत भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। चूँकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वह राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद, क्योंकि ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। भक्ति शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। अतएव शुद्ध भक्त की निधियाँ भौतिक निधियों से भिन्न होती हैं, अतएव दोनों की कोई समता नहीं। सूत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव नेमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। भौतिक जगत में निपट भौतिकवादी की संगति गर्हित समझी जाती है। भौतिकवादी को योषित संगी भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक माया जाल अर्थात स्त्रियों तथा अन्य साज सामान से होती है। ऐसी आसक्ति बद्ध है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा है भागवत संगी, जो सदैव भगवान के नाम यश गुण आदि की संगति में रहता है। ऐसी संगति वांछनीय है, पूज्य है, प्रशंसनीय है, और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववैरेकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणा श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमनारकंठयोस्फुरा।
हरे कृष्ण। 18वां अध्याय पहले स्कंद का। चर्चा अब तक हो चुकी है कैसे परीक्षित महाराज ने कली को देखा, बैल और गाय की बुरी स्थिति को देखा, दंड देना चाहा, कलि शरण में आए और फिर कलि को रहने के लिए चार स्थान, पांच स्थान दिए, चार दिए थे, कलि संतुष्ट नहीं हुआ चार से। दरअसल कलि क्यों संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने लक्षण प्रकट कर रहा था। चार स्थान दे दिए लेकिन संतुष्ट नहीं, तो कलियुग का ये लक्षण है, बहुत कुछ मिल भी जाए तो हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसीलिए कलियुग ने कहा एक और स्थान दीजिए, थोड़ा और। क्या आवश्यकता थी जब चार दे दिए संतुष्ट हो जाते, क्योंकि पहले तो एक भी स्थान नहीं मिल रहा था कलि को, लेकिन चार स्थान दिए फिर भी कलि ने कहा संतुष्टि नहीं, एक और। मतलब ये कलि का लक्षण है, थोड़ा और थोड़ा और। तो ऐसे कलि को पांच स्थान मिले और फिर परीक्षित महाराज ने राज्य करना प्रारंभ किया। तो अब इस अध्याय में पहले आठ श्लोकों में सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज के जीवन, जन्म, उनके कर्म और उनकी मृत्यु का वर्णन कर देते हैं बड़े संक्षेप में। तो आठ श्लोकों में पूरा बता देते हैं। तो वो कहते हैं, वर्णन करते हैं, क्यों परीक्षित महाराज का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि अभी परीक्षित महाराज के कार्यों का वर्णन हुआ, तो अब कैसे परीक्षित महाराज की मृत्यु हुई, कैसे उन्होंने सब त्यागा, तो उसको वर्णन करने के लिए प्रारंभ कह देते हैं कि परीक्षित महाराज जिनकी रक्षा स्वयं भगवान ने की थी, जब वो गर्भ थे, द्रोण के पुत्र ने, अश्वत्थामा ने जब बहुत तेजी से ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान ने रक्षा की परीक्षित महाराज की, और फिर परीक्षित महाराज ने बहुत अच्छे से राज्य किया, भगवान की भक्ति करते रहे, और अंत में भी सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने भागवत का श्रवण किया गंगा के तट पर, और श्रवण करते हुए अपने देह को त्यागा। तो जब ऐसा वर्णन उन्होंने किया इन श्लोकों में, तो यहाँ उन्होंने समझाया कि कैसे उनका जीवन रहा। दरअसल इन श्लोकों को कहते हुए परीक्षित महाराज के जीवन का वर्णन करते हुए हम सबके लिए शिक्षा दे रहे, कैसे थे परीक्षित महाराज, कैसे राज्य करते थे, पूर्ण रूप से अनासक्त, निर्भय, कोई उनको भय नहीं था किसी शत्रु का इत्यादि, क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित थे। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होता है उसे कोई भय नहीं होता, किसी चीज का भय नहीं होता। भय ये भौतिक क्रिया है, भय होना मतलब पूर्ण समर्पण नहीं है। फिर भय किसी भी चीज का हो सकता है, व्यक्ति को धन का, परिवार का, अपनी मान प्रतिष्ठा का या मृत्यु का, ये सारे भय ये भौतिक लक्षण है, ये भौतिकता के लक्षण है। क्योंकि भय क्यों होता है, आसक्ति के कारण। और जो व्यक्ति अनासक्त है, इस जगत से कुछ लेना देना नहीं, तो उसको भय कैसा, भय तो उसको होगा जो इस जगत में कुछ चाहता है, किसी चीज से आसक्त है, परिवार से, धन से, समाज से, मान प्रतिष्ठा से। लेकिन जो विरक्त है, अनासक्त, उसको कुछ लेना देना नहीं। ऋषभ देव ने जब सब कुछ त्याग दिया भगवान की भक्ति में, तो अपना राज्य त्याग दिया, और लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं थी। अकेले अवधूत की तरह वो घूमा करते थे। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं उनको भय नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, पूर्ण रूप से वो कृष्ण पर आश्रित होते हैं। और ऐसे भक्त जीवन के अंत में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान का स्मरण जीवन के अंत में आए, हम लोग जीवन में निर्भय रह सकें, अनासक्त रह सकें, इसके लिए दो कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, भगवान के भक्तों से श्रवण करना। प्रभुपाद लिखते हैं सबमिसिव हियरिंग, समर्पित श्रवण, जैसे परीक्षित महाराज ने किया समर्पित श्रवण। वैसे परीक्षित महाराज श्रवण की क्रिया के बहुत सुंदर उदाहरण हैं। भक्ति की 9 प्रक्रियाएं हैं, श्रवण से जो प्रारंभ होती हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि। तो श्रवण से अपने जीवन को पूर्ण करने वालों में परीक्षित महाराज का नाम प्रमुख है और कीर्तन करने वालों में सुखदेव गोस्वामी का। तो सबसे पहले व्यक्ति को समर्पित श्रवण करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे सभी मंदिरों में, इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में श्रवण होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण। जैसे हम कल भी बतला रहे थे कि जब परीक्षित महाराज कहीं भी जाते तो क्या करते, श्रवण। ब्राह्मण उनको कथाएं सुनाया करते कि आपके जो पितामह थे उन्होंने ऐसा ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया। तो भगवान और भगवान के भक्तों के विषय को समर्पित भाव से सुनना, समर्पित अर्थात चुनौती के भाव में नहीं, कोई दोष ढूंढने के भाव में नहीं, शंका संशय के भाव में नहीं, समर्पित भाव में, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति के भाव में, कि हमें इससे कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, हमें इससे आनंद, कृष्ण की भक्ति का आनंद और बढ़ सकता है। व्यक्ति समर्पित भाव में श्रवण करे। और दूसरा, महात्माओं की सेवा। ये 2 कार्य हमें निर्भय बना सकते हैं, हमें जीवन के अंत में श्री कृष्ण का स्मरण करा सकते हैं और जीवन में पूर्ण अनासक्त बना सकते हैं। इसलिए 2 कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, समर्पित भाव से श्रवण और महात्माओं की सेवा। नारद मुनि के जीवन में भी हम यही देखते हैं, नारद मुनि ने यही 2 कार्य किए, समर्पित भाव से श्रवण किया उन भक्ति वेदांतियों से और उनकी सेवा की, जिससे इतने निर्भय हो गए, इतने अनासक्त हो गए कि माँ की मृत्यु हुई तो तुरंत चल दिए जंगलों में, अलग अलग स्थानों से, बहुत सा वर्णन है नारद मुनि कहाँ कहाँ से गए, हम लोग सुन चुके हैं पिछले अध्याय में। तो कैसे इतनी निर्भयता एक छोटे से बालक में आ गई, क्या किया उन्होंने, यही 2 कार्य, समर्पित श्रवण और महात्माओं की सेवा। और उससे श्री कृष्ण का स्मरण हुआ, श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, पूर्ण अनासक्त हो गए नारद मुनि, छोटे से बालक थे। तो प्रमाण है कि केवल ये 2 क्रियाएं अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में श्रद्धा से कर लेता है तो फिर उसे श्री कृष्ण का स्मरण अंत में होना निश्चित है। तो ये हम परीक्षित महाराज के जीवन से सीख सकते हैं। तो करीब 8वें श्लोक तक जब ये वर्णन वो कर चुके सूत गोस्वामी, तो फिर आगे शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, क्योंकि अभी वो संतुष्ट नहीं हुए। ये तो बड़े संक्षेप में सुना दिया आपने, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि क्या सुना परीक्षित महाराज ने जीवन के अंत में। तो फिर 9वें श्लोक से लेकर करीब 23वें श्लोक तक भक्ति और भक्तों का गुणगान है कि भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, चर्चा है। थोड़ा सूत गोस्वामी कहते हैं, थोड़ा शौनक आदि ऋषि कहते हैं, तो ये चर्चाएं हैं। तो शौनक ऋषि कहते हैं कि आप हमें और बताइए, आप भगवान के भक्त हैं, आपके मुख से सुनना हमें तो बहुत लाभदायक है। हमने ये जो यज्ञ प्रारंभ किया, शौनक ऋषि कहते हैं, ये हमने यज्ञ प्रारंभ किया क्योंकि नैमिषारण्य में 1000 वर्ष चलने वाला, 1000 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ हुआ था। तो उन्होंने कहा, ये जो हमने यज्ञ प्रारंभ किया ये सकाम कर्म के आधार पर, इससे तो इसकी राख से अभी तक केवल हमारा मुंह काला हुआ है, बस और कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन सच्चा लाभ अब हो रहा है जब आप कथा सुना रहे हैं, ये सच्चा लाभ है जब हमें आपका संग मिल रहा है। और तब ये श्लोक कहते हैं, तुल्याम लभेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगि संघस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। वो कहते हैं कि लवे नापी लव मात्र भी तुल्याम, तुलना नहीं कर सकते किसकी, न स्वर्गम न पुनर्भवन, स्वर्ग और पुनर्भवन स्वर्ग की या मोक्ष की। भगवत संगी संगस्या, भगवत संगी संगस्या तुलयाम लवेनापि, भगवत संगी संगों का अर्थात भगवत संगी मतलब भगवान के भक्तों का संगस्या संग की तुलयाम लवेनापि, तुलना नहीं कर सकते लव मात्र भी। क्यों, यह लव मात्र जो उनका संग मिलता है उसकी तुलना, लवेनापि उसकी तुलना हम किससे नहीं कर सकते, न स्वर्गम न पुनर्भवम, न स्वर्ग की प्राप्ति से न मोक्ष की प्राप्ति से। दूसरे शब्दों में वे कह रहे हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, समझिए कोई आकर हमें स्वर्ग दे, स्वर्ग नहीं हमें मोक्ष दे दे, जन्म मृत्यु से छुटकारा, और कहे कि एक तरफ मोक्ष है, स्वर्ग है, भोग है, आनंद है, दूसरी तरफ भक्तों का संग है, हम भक्तों का संग चुनेंगे। क्यों, मर्त्यानां किमुताशिषः, मृत्यु लोक में मरने वालों के लिए और इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे आशीर्वाद इस जगत में समाप्त हो जाते हैं। जो भी आशीर्वाद, जो भी चीज, जो भी संपत्ति हमें शरीर के आधार पर मिलती है वो शरीर के साथ समाप्त हो जाती है। आप बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करते हो, मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। आप धन प्राप्त करते हो, मृत्यु के समय कोई लाभ नहीं होता। आप बहुत बड़ा बंगला बनाते हो, आप बहुत बड़ी गाड़ी लेते हो, आप बहुत प्रसिद्ध होते हो, आप नोबेल प्राइज लेते हो, मृत्यु के समय सब जीरो, कुछ नहीं। लेकिन जब हम आत्मा के संबंध में अर्थात आत्मा से संबंधित चीजों को प्राप्त करते हैं तो वो हमारे साथ आगे तक जाती है। और इसीलिए मर्त्यानां किमुताशिषः, ये जो सारे आशीष हैं, ये जो सारे भौतिक जगत के लाभ हैं, ये कोई लाभ, इनका कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें भगवत संगी संगस्य, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। जब रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया कि इस जगत में सबसे बड़ी हानि क्या है, किसको खो जाने से सबसे ज्यादा दुख होता है, तो रामानंद राय ने कहा कि भक्तों का संग चले जाने से सबसे बड़ी हानि है, ये सबसे बड़ा दुख है जीव के लिए। बाकी चीजें चली जाएं, धन चला जाए, क्या फर्क पड़ता है, फिर आ जाएगा, वो तो कर्म है। धन चला जाए, संपत्ति चली जाए, जीवन चला जाए, फिर मिल जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जीवन तो वैसे ही मिलेगा। मेहनत तो जीवन नहीं लेने के लिए करनी पड़ती है। देखिए मूर्खता लोगों की, अगले जीवन अच्छा बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अरे उसके लिए क्या मेहनत करनी है, वो तो वैसे ही मिलेगा। मेहनत तो जन्म समाप्त करने के लिए करनी पड़ती है, अगला जन्म नहीं लेना तब मेहनत करना। तो इसीलिए सारे आशीष वैसे ही मिलने वाले हैं। और इस श्लोक में कहा गया तो शौनक ऋषि कहते हैं कि मर्त्यानां किमुताशिषः, आप जैसे भक्तों का संग हमें मिल रहा है, कथा हमें सुनने मिल रही है, और क्या चाहिए हमें। तो इसीलिए आप सुनाते रहिए, आप भगवान की भक्ति का विषय कहिए। और उस समय सुत गोस्वामी इनके प्रश्न को सुनते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सुनना चाहते हैं कि बताइए परीक्षित ने क्या सुना। आपने तो केवल कह दिया कि परीक्षित को तक्षक ने काटा और काटने से वो मर गए, उसके पहले उन्होंने कथा सुन ली। अरे क्या सुना परीक्षित ने, कौन सी कथा सुनी, सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, इसको सुनाइए। तो उस समय सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं इस प्रश्न से, और वो कहते हैं कि आज जो मेरा विलोम जन्म था, दोषपूर्ण जन्म था, वो पूर्ण हो गया। अर्थात ये सूत हैं, तो सूत जन्म बहुत ऊंचा नहीं माना जाता, कोई बड़े ऊंचे कुल के नहीं माने जाते। सूत अर्थात ऊंचे कुल की माता और नीचे कुल का पिता, वर्ण का, नीचे वर्ण का। अर्थात ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता या वैश्य पिता इत्यादि। तो ऐसी जो संतान उत्पन्न होती है उसको अच्छा नहीं माना जाता, इन विवाहों को भी अच्छा नहीं माना जाता। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, दो प्रकार के विवाह होते हैं। तो अनुलोम और प्रतिलोम, एक में जहां पिता का वर्ण ऊंचा हो, दूसरे में माता का वर्ण ऊंचा। तो सूत उनको कहा जाता है जो ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए वो कहने लगे कि मेरा तो शुद्ध जन्म नहीं है, मेरा तो बहुत दोषपूर्ण जन्म है, लेकिन आज मेरे जन्म के सारे दोष पूरे हो गए। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोगों का संग मिला है। देखिए शौनक ऋषि गुणगान करते हैं सुत गोस्वामी का कि आप महान भक्त हैं, लवे नापी तुल्याम लवे नापी भगवत संगी। और सुत गोस्वामी कहते कि मेरा जन्म शुद्ध हो गया, सारे दोष जो निकल गए क्योंकि आप जैसे लोगों का संग मिला। क्या गुण है आप में? आप कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, आप कृष्ण कथा को बारंबार और विस्तार से सुनना चाहते हैं। तत्वतः प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को तत्वतः जानना चाहिए, भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, जितना हो सके उतना श्रवण हमें भगवान के विषय में करना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं, प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि जो भक्त होते हैं वो बड़ी आसानी से अपने पापों को और अपनी अयोग्यताओं को दूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ सुत गोस्वामी कह रहे हैं मैं तो अयोग्य हूँ, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आज आपके संग में मेरी अयोग्यता दूर हो गई। तो हर भक्त अपने पापों को और अपनी अयोग्यता को दूर कर सकता है अगर वो भक्तों का संग करता है। भक्तों का संग करे, भगवान के नामों का उच्चारण करे, कुछ चीज़ें अगर वो करे उससे बहुत जल्दी, प्रमुखतः चार चीज़ें समराइज अगर हम सार में लें तो पहली चीज़ भक्तों का संग करे, दूसरा चीज़ श्रवण करे जितना हो सके उतना श्रवण, तीसरा चीज़ प्रचार करे, और चौथा चीज़ भगवान के नामों को कम से कम बिना अपराध के उच्चारण करें। अगर ये चार चीज़ें कोई कर लेता है, भगवान के भक्तों का संग, भगवान के विषय में श्रवण, प्रचार और भगवान के नामों का अपराध मुक्त उच्चारण, तो निश्चित रूप से वो भक्ति में करते हुए जो भी उसके पाप हैं, जो भी उसकी अयोग्यताएं हैं वो दूर हो जाएंगे। भगवान के नाम के जप में कई श्रेणियां होती हैं, अपराध युक्त नाम, अपराध मुक्त नाम और शुद्ध नाम। अपराध युक्त नाम जहां हम नाम अपराधों को करते हुए भगवान के नाम का जप करते हैं उसको अपराध युक्त नाम कहते हैं। और प्रभुपाद समझाते हैं कि इससे केवल भौतिक लाभ होता है। आपकी कोई कामनाएं हैं, भौतिक कामनाएं, और आप अपराध युक्त जप करते रहिए, कामनाएं पूरी हो जाएंगी, कुछ धन मिल जाएगा, कोई स्त्री मिल जाएगी, बस इतना ही होगा, कोई लाभ नहीं होगा। कभी कभी इस जगत की चीजों को प्राप्त करके लोगों को लगता है हमें बहुत कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन जो सच में ज्ञानी हैं वो इन चीजों में कोई आनंद नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इनकी एक शुरुआत है और इनका एक अंत है, आदो अंतो। जो भगवान के भक्त होते हैं न तेषु रमते बुधा, भगवद्गीता में भगवान कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते आद्यंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो भगवान के भक्त होते हैं वो इनमें आनंद नहीं लेते। प्रभुपाद इस अध्याय के कई तात्पर्यों में एक शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं और वो है आत्मसंयम। आत्मसंयमी व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकता है, आत्मसंयमी व्यक्ति कलयुग के प्रभाव को नाश कर सकता है। ऐसे कई तात्पर्यों में प्रभुपाद ने इस शब्द को, इस विशेष शब्द को कई बार इस्तेमाल किया। तो हम जब ये अध्याय देख रहे थे तो हमने देखा कि इसकी विशेषता यही है कि प्रभुपाद इस शब्द को कई बार इस्तेमाल कर रहे हैं। आत्मसंयमी व्यक्ति कलयुग के प्रभाव को दूर कर सकता है, आत्मसंयमी व्यक्ति। तो आत्मसंयम क्या है? आत्मसंयम की परिभाषा ये है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो आत्मसंयमी व्यक्ति है वो इनमें आनंद नहीं लेता। किसमें? जो इंद्रियों के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। क्यों नहीं लेता? क्योंकि ये दुख ही देता है केवल। क्यों दुख देता है? आद्यंतवंत कौन्तेय, इसका आदि है और इसका अंत है। तो जिस चीज का भी आदि है और जिसका अंत है वो भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है। शरीर का आदि है, शरीर का अंत है। आत्मा का न आदि है न अंत है। इसलिए जो आत्मा में रमण करते हैं उनको असली आनंद प्राप्त होता है, जो शरीर में रमण करते हैं उनको दुख योनय एवते। तो इसलिए आत्मसंयमी का अर्थ है वो व्यक्ति जो इन भोगों में आनंद नहीं लेता, अपने आप को इनसे दूर रखता है। कौन से आनंद? आद्यंतवंत, इस भौतिक जगत के आनंद। तो इसलिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए और साथ साथ भगवान के नामों का उच्चारण। तो जब व्यक्ति अपराध युक्त नाम लेता है तो केवल भौतिक भोग प्राप्त होते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए जब करते समय, वैसे भी, कि हमारे हृदय में कभी ऐसी इच्छाएं नहीं आए कि वो पूरी हो जाए। अगर भौतिक इच्छाएं आएंगी जब करते समय तो भगवान पूरी कर देंगे। आप कोई धन का कामना करोगे, स्त्री की कामना करोगे, किसी अन्य भोग की कामना करोगे, बड़ी जल्दी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आपका जप अपराध युक्त है। और अपराध युक्त जप से केवल भौतिक लाभ मिलता है। तो ऐसे लाभ से क्या लेना देना हमें? जो प्रारंभ होगा समाप्त तो हो जाएगा। बुधा न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता, उसमें रमण नहीं करता। और दूसरा होता है अपराध मुक्त नाम। अपराध मुक्त नाम मतलब जब हम जप करते हैं अपराध नहीं करते। अभी हमें शुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं हुआ लेकिन हमने अपराध करना बंद कर दिया, इसको नामाभास भी कहते हैं। और ये नाम का जप किया था अजामिल ने, इसीलिए उसे मुक्ति आगे चलकर प्राप्त हुई। तो इसीलिए नामाभास अवस्था वो अवस्था है जहां तो अपराध मुक्त नाम मतलब जहां व्यक्ति अपराध नहीं करता, जैसे जाने बिना अपराध के भगवान के नाम को पुकारा, तो उससे क्या प्राप्त होता है? प्रभुपाद कहते उससे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है अगर हम अपराध मुक्त नाम करते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है शुद्ध नाम से। तो पहले हम अपराध युक्त नाम करते हैं, फिर अपराध मुक्त नाम करते हैं। वैसे जो अपराध मुक्त नाम है ये शुद्ध नाम और अपराध युक्त नाम के बीच की अवस्था। आप अपराध से मुक्त हो गए, शुद्ध नाम तक नहीं पहुंचे, उस अवस्था को नामाभास। नामाभास मतलब नाम का अब आभास हो रहा है, प्राप्त नहीं हुआ है, पूर्ण प्राप्त नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए आपके लिए कोई बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाए और उसको आपके सामने रखा जाए, अभी आपने खाया नहीं है लेकिन उसका आभास होने लगता है ना, उसकी सुगंध आती है, कोई गरम गरम चीज़ है तो बड़ी पूड़ी या इसकी सुगंध आने लगती है, तो इसको आभास कहते हैं। अभी आपने खाया नहीं है लेकिन आपका मन संतुष्ट होना शुरू हो गया, क्यों? क्योंकि पता चल गया पूड़ी मिलने वाली है, अब ये बना है, तो वो ले लेके सुगंध लेकर ही आनंद आता है, तो इसको आभास कहते हैं। तो इसी तरह अभी नाम जो असली स्वाद है नाम का, वो मिला नहीं है शुद्ध नाम, वो तो सामने रखा है लेकिन आभास हो रहा है कि क्या होगा वो शुद्ध नाम, क्या आनंद आएगा उसमें, तो उसको नामाभास कहते हैं। तो नामाभास से मुक्ति और शुद्ध नाम से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भगवान के भक्तों का संग करें, श्रवण करें, प्रचार करें। प्रचार ये हमारे हृदय को धोने का माध्यम है। जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं कि आप प्रसाद लेने के बाद जब आपका हाथ भी गंदा है और प्लेट भी गंदी है, तो आप जब जाते हो तो आप प्लेट को धो लेते हो, तो जिस हाथ से आप प्लेट को धोते हो उस हाथ को आपको फिर धोना नहीं पड़ता। आप प्लेट लेते हो, उसमें साबुन लगाते हो, जो भी करते हो उसको धोते हो, आप प्लेट धो रहे हो, हाथ नहीं धो रहे हो, लेकिन आपका हाथ धुल जाता है। उसके बाद कोई फिर से उस हाथ को नहीं धोते हैं क्योंकि वो पहले ही धुल चुका है। प्रचार इसी तरह है, हमारा हृदय गंदा है, लोगों का हृदय गंदा है, प्लेट गंदी है, प्लेट लोगों का हृदय है, हाथ हमारा हृदय है। जब हम अपने हाथ से लोगों का हृदय धोएंगे, प्रचार करेंगे, तो स्वाभाविक है हमारा भी हृदय शुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भी तो सुनेंगे, जो हम कृष्ण कथा कह रहे हैं वो हम भी सुन रहे हैं, तो इसीलिए हमारा भी हृदय उस श्रवण से शुद्ध होता है। तो एक प्रचारक सबसे पहले अपने आप को प्रचार करता है, फिर दूसरों को प्रचार करता है, पहले आचार फिर प्रचार। तो इसलिए प्रचार करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग निर्भय और पूर्ण तरह से भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, अपने पापों को, अपने अयोग्यताओं को समाप्त कर सकते हैं। तो सुत गोस्वामी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, तो बहुत प्रसन्न हुए कि आज मेरा जीवन पूर्ण हो गया। और फिर उन्होंने कृष्ण का वर्णन करना प्रारंभ किया कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं, भगवान कैसे हैं, पूर्ण शुद्ध हैं इत्यादि उन्होंने वर्णन किया। क्योंकि इसके पहले उन्होंने कह दिया था शौनक आदि ऋषियों से कि आपने जो भी पूछा था मैंने बता दिया, आपने परीक्षित महाराज के बारे में पूछा बता दिया। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो वो सुनना है जो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सुना, ये तो आपने बताया तो बहुत छोटा, असली चीज बताइए अभी। तो फिर उन्होंने अब भगवान की भक्ति का वर्णन प्रारंभ किया और फिर उन्होंने परीक्षित महाराज का भी वर्णन किया। तो उन्होंने कहा परीक्षित महाराज का वर्णन करते हुए कि एक समय परीक्षित महाराज विचरण कर रहे थे, करते करते एक वन में गए, बड़ी प्यास लगी थी, भूख लगी थी, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऋषि एक मुनि ध्यान में मग्न है। तो परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न किया कि कहीं पानी है, कुछ खाने के लिए है या क्या है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। और ऐसे देख के परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया। एक बहुत सुंदर बात सुत गोस्वामी ये कहते हुए बताते हैं, इस बात को कहते हुए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, पहली बार परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया। अर्थात कभी उन्होंने ब्राह्मणों पर ऋषि मुनियों पर क्रोध नहीं किया था। आपको याद होगा जब परीक्षित का जन्म हुआ, युधिष्ठिर महाराज सुन रहे थे तो उन्होंने एक बात सुनी, बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या बात सुनी थी? ज्योतिषियों ने क्या बताया था? इसे ब्राह्मण का श्राप लगेगा। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्राह्मण का श्राप, ऐसा कौन सा अपराध कर देगा ये ब्राह्मण के प्रति? तो यहां पर अब ये जो अपराध कर रहे हैं पहली बार, सुत गोस्वामी कहते इससे पहले कभी वो इतना किसी ब्राह्मण के ऊपर क्रोधित नहीं हुए थे, लेकिन आज ब्राह्मण ने उनका स्वागत नहीं किया। क्योंकि नियम है, राजा आए हैं, राजा क्या कोई भी अतिथि आए, कम से कम घर में आए तो उसको बैठने का स्थान देना, जल देना, थोड़ी मीठी बातें करना, लेकिन यहाँ तो ध्यान ही नहीं दिया। परीक्षित सोचने लगे, अरे इतना बड़ा मैं राजा चक्रवर्ती सम्राट और ये मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहा है। अब वो ध्यान मग्न थे तो क्रोध आया। जाते जाते उन्होंने देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा था, तो अपने धनुष से उन्होंने सांप को उठाया और गले में डाल दिया क्रोध में। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कि क्रोध में आकर उन्होंने ऐसा किया और पहली बार। तो क्यों हुआ? दो कारण हुआ। पहला, भगवान की योजना। भगवान कुछ प्रकट कराना चाहते थे, अपना कार्य कराना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनको क्रोधित। बाद में परीक्षित महाराज जाते समय सोच रहे थे, मैंने क्रोध क्यों किया, ये मैंने क्या किया, सही किया कि गलत किया, क्या वो व्यक्ति सही में ध्यान में था या नाटक कर रहा था। क्योंकि परीक्षित महाराज ने क्रोध में क्यों डाला कि ये नाटक कर रहा है, क्या ध्यान व्यान कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे बैठा है नाटक कर रहा है, ऐसे उनको मन में आ गया। लेकिन बाद में सोचने लगे कि तो देखिए इसका मतलब केवल उस समय के लिए भगवान ने प्रभावित कर दी उनकी मति, उनकी बुद्धि कि क्रोध करो और डालो उठा के साथ, डाल दिया उन्होंने केवल उस समय के लिए। तो जब भक्तों के साथ ऐसा कुछ होता है उनके जीवन में जो पहले कभी नहीं हुआ या जो भक्तों के लक्षण नहीं है, जैसे क्रोध करना, ऋषि मुनियों का अपमान करना, ये तो भक्तों के लक्षण नहीं। और वो भी भक्त कौन? परीक्षित महाराज, हमारे जैसे नहीं। हम लोग तो ठीक है, क्रोध रोज कर देते हैं, अपमान रोज कर। परीक्षित महाराज जिन्होंने पहले कभी नहीं किया था, उनसे अगर ऐसा हो जाए तो इसका अर्थ है दो कारण। पहला, भगवान कुछ अपना कार्य कराना चाहते हैं, और दूसरा, भगवान अपने भक्त का प्रेम बढ़ाना चाहते हैं अपने प्रति। जैसे परीक्षित को इस अवस्था में डालकर, फिर जैसे ही परीक्षित को पता चला कि बस अब 7 दिन रह गए हैं, तुरंत सब कुछ त्याग कर केवल कृष्ण कथा कृष्ण की। तो इसीलिए भक्तों के जीवन में जब कुछ गलत होता है, जब कष्ट आते हैं, तो यही मानना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए कि अरे अरे बेचारा अपने कर्मों से बंधा हुआ है। नहीं, परीक्षित महाराज कोई कर्मों से नहीं बंधे थे, उनके तो कर्म वैसे ही कट गए गर्भ में जब भगवान ने उनकी रक्षा की, दर्शन दिए। भगवान का नाम सुनने से व्यक्ति के कर्म कट जाते हैं, फिर जिस व्यक्ति ने भगवान के दर्शन कर लिए उसके कर्म कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए कर्म नहीं थे परीक्षित महाराज के, ये तो भगवान की योजना थी। भगवान चाहते थे भागवत प्रकट हो, तो इसीलिए उन्होंने ये कार्य कराया। और दूसरा, वो चाहते थे परीक्षित का प्रेम और बढ़े, क्योंकि हो सकता है व्यवस्थापन करने में, राजकाज करने में थोड़ा बहुत ध्यान कृष्ण से हट गया हो, तो भगवान अब तीव्रता लाना चाहते थे। तो इसलिए ये जान लीजिए, भक्तों के जीवन में जब कोई भी ऐसी दुर्घटना कहना चाहिए या ऐसी बुरी अवस्था आ जाती है जहां समझ नहीं पाते कि भक्तों के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किसी ने भी सुना, शमिक ऋषि जिनके गले में ये सांप डाला था, जब उन्होंने भी सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि परीक्षित ऐसा कर सकते। तो जिसने भी क्यों नहीं हुआ तो हमें विश्वास नहीं होता, अरे भक्त ने ऐसा कर दिया, नहीं उन्होंने किया नहीं, ये तो भगवान ने करवा दिया, क्यों? योजना थी। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि भक्त के जीवन में जब भी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, या कोई ऐसी अचानक कोई बात हो जाती है जिसकी अपेक्षा नहीं है, भगवान की योजना है और भगवान चाहते हैं भक्त का प्रेम उनकी ओर बढ़े। हो सकता है वो भक्त बहुत ज़्यादा भौतिकता में पड़ रहा हो सकता है भक्त उनसे दूर जा रहा हो भक्ति के नाम पर, जैसे परीक्षित महाराज, हो सकता है उदाहरण कि वो राजकाज करते हुए भगवान से थोड़े दूर जा रहे हैं, तो भगवान ने कहा नहीं, इसका प्रेम बढ़ाना है, इसलिए ऐसी योजना। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने जब सर्प डाल दिया और वो वहां से चले गए, और अब जो शमिक ऋषि जिनके गले में ये डाला था, उनका एक पुत्र था श्रृंगी, वो भी ऋषि था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण पुत्र था। तो श्रृंगी को जाके किसी ने बताया, रे तुम्हें पता है परीक्षित राजा वो आए थे और तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल के चले थे। जैसे ही उसने ये सुना श्रृंगी ऋषि ने तुरंत क्रोधित हो गया, क्योंकि मेरे पिता का इतना अपमान कर दिया, और तुरंत इन क्षत्रियों के प्रति, राजा के प्रति बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगा। कहने लगा ये क्षत्रिय ये राज्य करते हैं हमारे आशीर्वाद से, और ये क्षत्रिय कौन है, इनको तो केवल जैसे द्वारपाल होता है या द्वार पर खड़ा हुआ कुत्ता होता है, उनको अंदर आकर स्वामी के साथ खाने की अनुमति नहीं है, और ये द्वार पर खड़े होने वाला कुत्ता ये अंदर आकर खाने की हिम्मत कर रहा है। देखिए क्या शब्द इस्तेमाल किए परीक्षित महाराज के लिए, कैसा ये कर रहा है, तो इसको कोई अनुमति नहीं है। किसने दे दी? हाँ श्री कृष्ण चले गए हैं, श्री कृष्ण को मानता है तो श्री कृष्ण चले गए हैं, इसलिए ये सारे राजा अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्षत्रिय मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि अब श्री कृष्ण नहीं है, अब देखिए मैं इसको कैसे दंड देता हूं। और उसने तुरंत कह दिया कि आज से सातवें दिन तक्षक आकर इनको डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये मेरा प्रभाव देखो। प्रभुपाद समझाते हैं कि कलयुग यहीं से प्रारंभ हो गया, कलयुग पहले से आया था, जैसे ही श्री कृष्ण गए कलयुग ने प्रवेश कर लिया, लेकिन कलयुग फल फूल नहीं रहा था परीक्षित महाराज के प्रभाव के कारण, क्योंकि परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली भक्त थे कि उन्होंने कली के प्रभाव को दूर रखा था, तो फल फूल नहीं रहा था, था लेकिन फल फूल नहीं रहा था। लेकिन अब जब ब्राह्मणों ने क्रोध करके जब उनका पतन हो गया, जब उन्होंने गलत बातें करने लगे, तो उस समय फिर कलयुग प्रवेश कर गया। इसीलिए कलयुग के जो ब्राह्मण हैं उनके अंदर योग्यता नहीं है, श्राप देने की योग्यता नहीं है, यज्ञ करने की योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है ब्राह्मणों में, क्योंकि ब्राह्मणों का पतन शुरू हो गया, कलयुग प्रारंभ हो गया श्रृंगी ऋषि के इस क्रोध से, क्योंकि अभी तक किसी क्षत्रिय ने ऐसा कार्य नहीं किया था, और अभी तक किसी ब्राह्मण ने किसी राजा को, इतने महान भक्त को ऐसा श्राप नहीं दिया था। तो फिर श्रृंगी ऋषि ने ये श्राप दे दिया कि आज से सातवें दिन ये मर जाएंगे, और फिर ये श्राप बोलने के बाद अपने पिता के पास आया शमिक ऋषि अभी भी ध्यान में थे, गले में अभी भी सांप पड़ा हुआ था, और उनको देखकर रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा अपने पिता के पास आकर, और रोने से जो पिता का ध्यान था वो खुल गया, फिर क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, तो पिता का ध्यान खुल गया और पिता ने पूछा अपने बालक से, वह क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, तो उसने फिर सारी घटना बताई कि ऐसे परीक्षित आए थे आपके गले में, आप उन्होंने सांप डाल दिया, आपका अपमान कर दिया, और फिर मैंने उन्हें श्राप दे दिया, ये भी उसने बताया कि मैंने उन्हें श्राप दे दिया, और क्या श्राप दिया, सात दिन के अंदर मर जाए। जैसे ही शमिक ऋषि ने सुना उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत दुख कि ये क्या कर दिया तुमने, अरे तुम जानते हो किसको श्राप दे दिया, परीक्षित कौन है जानते हो, उसके राज्य में एक चोर नहीं है, एक डाकू नहीं है, सारे ऋषि मुनि बड़ी आसानी से बड़े आराम से अपनी भक्ति कर रहे हैं, इतना महान वो भक्त है, तुमने केवल उसको नहीं सारे ऋषि मुनियों को श्राप दे दिया, क्योंकि अब कोई भक्ति नहीं कर पाएंगे बड़ी स्वतंत्रता से, परीक्षित के राज्य में निर्भयता से ऋषि मुनि भक्ति कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तुमने मारने का उसको कह दिया, श्राप दे दिया, उसको मार डाला, अरे तुमने केवल परीक्षित को नहीं सारे ऋषि मुनियों को मार डाला, बहुत दुखी हो गए कि क्या कर दिया तुमने, इतना इतना घोर अन्याय, अहंकार दिखाया तुमने, तो जहां अहंकार ब्राह्मणों में आ गया वहां कलयुग प्रारंभ हो गया, और उस समय उन्होंने कहा कि नहीं हमारे लिए ठीक नहीं है, क्या किया था, अरे अगर उसने सांप डाल भी दिया तो भी क्या बात हुई, उसको ये तुम्हें उसको देने की क्या आवश्यकता थी जो तुमने श्राप उसको दे दिया। बहुत सुंदर श्लोक में शमिक ऋषि एक बात कहते हैं, शमिक ऋषि का अपमान हो गया था, उन्होंने तिरस्कृत हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये तुमने गलत लिया, ये जो बदला लेने का तुम्हारा विचार है ये बड़ा गलत है, और वो बहुत सुंदर बात कहते हैं श्लोक नंबर 48 में, वो कहते हैं तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि, वो कहते हैं भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं, अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मार जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। देखिए कितनी सुंदर बात है, ये भगवान के भक्तों की सहिष्णुता है। साधु मतलब तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये साधु शब्द की परिभाषा है, बस ये साधु, एक ही परिभाषा। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो साधु होता है वो कभी ऐसे क्रोध नहीं करता, तुमने जो क्रोध कर दिया, और वो भक्त कितने सहिष्णु होते हैं, तो वो दोनों तरफ से, क्योंकि उसका अपमान हुआ उसने कहा कोई चिंता नहीं, मेरा अपमान कर दिया ना, गले में सांप डाल दिया, क्या फर्क पड़ गया। लेकिन परीक्षित जैसे राजा को तुमने क्रोध कर दिया, ये सही नहीं, ये तुम्हारा ब्राह्मण होने का लक्षण नहीं, ये भक्त होने का लक्षण, भक्त सहिष्णु होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसके तात्पर्यों को भी पढ़ना चाहिए। तो क्या बताया जा रहा है कि भक्त के जीवन में कितना ही कष्ट क्यों ना आए, भक्त कभी बदले की भावना नहीं रखता। ये जो बदले की भावना से उसने श्राप दे दिया, श्रृंगी ऋषि ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया, मैं दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं, नहीं, कुछ भी हो जाए हमारे साथ हमें बदले की भावना नहीं लानी चाहिए, क्योंकि बदले की भावना मतलब द्वेष, द्वेष मतलब कृष्ण से परे। सरल, एक द्वेषी व्यक्ति कृष्ण के निकट नहीं जा सकता, बदले की भावना से हम कृष्ण के निकट नहीं जा सकते कि मैं दिखाता हूं इसको मैं कितना बड़ा भक्त हूं। ये श्रृंगी ने यही कहा, मैं दिखाता हूं कितनी शक्ति है मेरे अंदर। तो जो दिखाने की, बदला लेने की भावना है, शमी कृषि समझा रहे हैं, भक्त की नहीं है। और क्या क्या नहीं हो जाए, सबका वर्णन कर दिया, भक्त का अपमान हो जाए, जान से भी मार दिया जाए तो भी वो बदले लेने का प्रयास नहीं करता। शापित हो जाए, विचलित हो जाए, अपमानित हो जाए, ठगा जाए, कुछ भी हो जाए भक्त भक्त के साथ, तो भक्त कभी भी बदला लेने की भावना नहीं करता, ये भक्त है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें सीखनी चाहिए कि हमारे साथ कुछ भी हो जीवन में, आज नहीं अभी बहुत जीवन बाकी है, हम ठगे जाए, हमारे साथ धोखा हो जाए, हम अपमानित हो जाए, ऐसी चीज हो जाए जो हो ही नहीं सकती, लोग झूठा आरोप लगाएं, लेकिन बदले की भावना में कि हाँ अब मैं उसको दिखाऊंगा, मैं भी दिखाता हूं क्या कर सकता हूं, ये भक्त नहीं है। बदले की भावना तो छोड़िए, भक्त वो है जो मुख से अपशब्द भी नहीं निकालता ऐसी अवस्था में, वो भक्त है। हाँ क्रोधित होकर हम दूसरे को अपशब्द कहने लगे तो अर्थ क्या है, आपको अभी आत्मसंयम नहीं है, ये आत्मसंयमी के लक्षण है। क्यों प्रभुपाद इस तात्पर्य में, इन अध्याय के तात्पर्य में इतना कह रहे हैं, ये देखिए सार में अंतिम श्लोकों में क्या कहा गया है, कैसे आत्मसंयमी होना चाहिए व्यक्ति को। वो भक्त है, अपमान कर रहा है कोई, ठगा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो बदले की भावना नहीं। हाँ इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्तों को सब कुछ लुटा देना चाहिए, भगवान की संपत्ति है, कोई आए धोखा दे पैसा ले जाए, हम बोले कोई बात नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। तुकाराम जी की तरह, तुकाराम जी मिर्ची बेचने गए, उनकी पत्नी ने कहीं से अपना सब कुछ बेच कर कुछ बोरे मिर्ची ला कर दी कि जाओ इसको बेच कर आओ, कुछ कमाई करो। तुकाराम जी मार्केट में चले गए, मिर्ची रख दी और कीर्तन कर रहे हैं भगवान का नाम का। लोग मिर्ची लेने आए, कितने की है, कितनी चाहिए, इतनी चाहिए, ले जाओ। अब वो अपने आप ही पैसा यहाँ रख जा, तो कोई एक रुपया रख रहा है, पाँच रुपये की ले जा रहा है, तो तुकाराम जी को कोई चिंता नहीं। कोई एक तो आया बड़ा व्यक्ति जो बड़ा शक्तिशाली था गुंडे तरीके का, वो पूरा बैग उठा कर ले गया, तो तुकाराम जी को कोई चिंता, ले जाओ संतुष्ट रहो, कोई बदले की भावना नहीं। हाँ तो हमें ऐसे भगवान की चीज़ों को नहीं करना है, अपनी चीज़ों के लिए ठीक है लेकिन भगवान की नहीं। यहाँ कोई मंदिर में आए, कोई लाइट निकाल के ले जाए, कोई पंखा निकाल के ले जाए, हम लोग बोले बहुत कोई चिंता नहीं ले जाओ, नहीं, भगवान की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए जब तक हमारे को रक्षा का कर्तव्य दिया गया, तो हमें कर्तव्य है तो रक्षा, कर्तव्य को नहीं त्यागना। लेकिन बदले की भावना नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति से भी जो हमें ठगता है, हमारा अपमान करता है। हाँ, कोई भगवान का अपमान करता है तो व्यक्ति को हनुमान जी की तरह आग लगा देनी चाहिए अगर कोई भगवान का अपमान करे, लेकिन अगर अपना अपमान करे कोई बदले की भावना नहीं, चुप रहना चाहिए। तो ऐसे शमिक ऋषि यहाँ बतलाने लगे और फिर वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, मेरे इस पुत्र को क्षमा कर दीजिए, इसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसको कृपा करके क्षमा कीजिए, जानता नहीं, अबोध बालक है, क्या कह दिया, तो आप कृपया इसके पाप को आप क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और फिर वो जानते थे कि परीक्षित महाराज इसको बहुत अच्छी तरह से लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि सामान्यतः अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, ना ही वे सांसारिक वस्तुओं में हर्षित होते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि अगर हम भक्ति में लगे रहें तो फिर धीरे धीरे विरक्ति हमारे हृदय में आएगी और हम अपने आप को आत्मसंयमी बना पाएंगे। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि किसी बाहरी प्रयास से आत्मसंयम नहीं आता है, इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाने से स्वयं व्यक्ति आत्मसंयमी हो जाता है। तो ऐसे इस अध्याय में शमिक ऋषि ने अंत में बड़ा दुख प्रकट किया, अपने पुत्र के प्रति क्षमा याचना की भगवान से, और फिर उन्होंने अगले अध्याय में हम देखेंगे संदेश भेजा। और उस तरफ भी परीक्षित महाराज जब जा रहे थे तो रास्ते में सोच रहे थे मैंने क्या किया, सही किया, गलत किया, क्या हुआ, वहाँ पहुँच कर भी चिंता कर रहे थे। तो 19वें अध्याय में कल हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे जब परीक्षित महाराज को समाचार मिला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई और फिर आगे उन्होंने क्या कार्य किया, तो इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे।